नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने सदस्य देशों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा है।
भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया। साथ ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की सफल यात्रा संपन्न कर आज स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। यह 3 दिन का सम्मेलन देश में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर केंद्रित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत और पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपायों का आश्वासन दिया। गृहमंत्री बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुंचे थे। 14 अगस्त से किश्तवाड़ा, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 33 लापता हैं। इस बीच खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आज लगातार 7वें दिन भी स्थगित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के स्थापना दिवस समारोह में श्री प्रधान ने PM ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा के दूसरे चरण सहित कई पहलुओं की शुरूआत की। श्री प्रधान ने कहा कि दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार आज के बाद भी दायर किए जा सकते हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान आयोग ने यह दलील दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा का अंतिम चरण आज पटना में आयोजित किया गया। यह मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध अभियान का समापन था। और अब खेल की बात करें। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप में अपने अंतिम पूल मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत पूल ए के मैच में अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है और सुपर 4 में पहुंच चुका है। अन्य मुकाबलों में आज मलेशियाई टीम भी चीनी ताइपे पर जीत दर्ज कर सुपर 4 में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।